रुद्राश्रमद्भागवतं तृतीयस्कन्ध अध्याय 24 अध्याय शिष्य के कर्दम मुनि का वैराग्य श्लोक संख्या 1 और 2 खाली जाते एक लाइन इतकर दोन्ही श्लोक सोबत नाही ना मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवम् निर्वेदवादिनीमेवम् मनोर्दुहितरं मुनि थोडं खाली पाहिजे ते थोडस तुम्ही वरती गेलं होते दयालू शालिनी महा शुक्लाभी व्याहृतं स्मरन् ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम् अधुरा संप्रपत्स्यते मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवम् मनोर्दुहितरं मुनि दयालु शालिनी महा शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम् अदूरात् संप्रपत्स्यते मैत्रे उवाच निर्वेदवादिनीमेवम् मनोर्दुहितरं मुनि दयालु शालिनी माह अक्षरो गर्भम् अधुरा संप्रपस्यते श्लोक कर्दम मुनि ने वैराग्य पूर्ण बातें करने वाली स्वयंभु मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। दूसरे श्लोक का अनुवाद। मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से अवतार रूप में प्रकट होने जा रहे थे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं असाधु साधुना दायिन नाति नीचो ततारक हान मुंच कदाचिन मां प्रेमणा हृत कंठयो स्फुरः मतलब वो पिछले दो दिनों से हम भागवत के प्रथम तृतीय स्कंध अध्याय 24 कर्दमुनि का वैराग्य इस शीर्षक वाले अध्याय के इन दो श्लोकों का भावों को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। से भक्तों का जो जीवन होता है, एक साधु का जीवन जो भगवान को प्राप्त किए, उनकी प्रत्येक क्रिया है, उनके प्रत्येक शब्द कुछ विशिष्ट भाव को, विशिष्ट शिक्षाओं को धारण करते हैं। कि कुछ वक्त कहे प्रभु जी तात्पर्य है ही नहीं, आप दो दिन से बोले जा रहे हैं। तो दो दिनों हमने जो श्रवण किया विषुप से, वह माता देवहूति जिनके लिए मैत्रेय, और अप्रत्यक्ष रूप से हम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय के संवाद को दोहरा रहे और सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को श्रील प्रभुपाद यहाँ पर दोहरा रहे। ये कह सकते संसार में जितने संत महात्मा है सभी की वाणी एक साथ है। ये भागवत में जो मैत्रेय के शब्द है, शालिनीम मनोदुहितरम अनिंदिते, ऐसी माता देवहूति जो स्वयंभू मुनि की पुत्री थी, स्वयंभू मनु की पुत्री, जिसका संपूर्ण जीवन एक आदर्श रहा, इसलिए शब्द प्रयोग किया गया अनिंदित, मतलब अनिंदनीय। कभी कोई ऐसा उनके जीवन में कोई क्रिया, कोई विचार नहीं था जो निंदित हो। सदैव अत्यंत सेवापरायण रही माता देवहूति, और सबसे प्रमुख रूप से अंततः शालिनीम शब्द यहाँ पर मैत्रेय जब प्रयोग किए, प्रशंसनीय क्यों है कि सेवा की और सेवा के फलस्वरूप उन्हें जिसे कहते सेवा के बदले मेवा भी मिला है। इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और उस ऐश्वर्य संसार के समस्त भोगों को स्वीकार करने के उपरांत अब जो वैराग्य उनमें प्रकट हो रहा है। कल जैसे अंततः लगभग किसी ने प्रश्न पूछ लिया था जब कथा का विराम हुआ था कि माता देवहूति से क्या गलती हुई थी, क्या माता देवहूति से गलती हुई फिर वो पश्चाताप कर रही है। तो हमने वहां पर भी इस बात को जब अंत किया था कि वास्तविक एक तो पहला बात है कि जो भगवान के ही विशेष परिकर है, भगवान के निज जन है, जो भगवान के माता पिता बने हैं, भगवान के साथ लीला में सहभाग लिए। जैसे हम सदैव सुनते भी इस बातों को कि आप कल्पना कर सकते हैं इस्कॉन जगत में, संपूर्ण विश्व में जो हरे कृष्ण आंदोलन है, जिसमें कितने होंगे संख्या भक्तों के, अभी अंदाज लाखों करोड़ों भी कह सकते हैं, नहीं करोड़ तक तो पहुंचने में होंगे, बहुत अधिक लाखों की संख्या में है, चाहे अमेरिका में हो, रशिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, भारत में हो, अमरावती में हो, नागपुर में हो, पूना में हो, पूना में तो 10-15 हजार तो पूना में रहते, फिर मुंबई में हजारों है, दिल्ली में लगभग हजारों है, तो संपूर्ण विश्व में देखा जाए हरे कृष्ण आंदोलन अग्नि की तरह प्रसारित हो रहा है, तो इतने असंख्य भक्त हैं। पर उनमें से यदि कहा जाए कि कुछ विशिष्ट पहले 10 भक्तों को चुनकर निकालिए, तो स्वाभाविक शायद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को चुना जाएगा। मतलब लाखों में से यदि 10 चुनना हो या लाखों में से 50 चुनना हो, जैसे हाल ही में प्रतिवर्ष अभी इस्कॉन में नया जो प्रारंभ हुआ जीबीसी कॉलेज, मतलब अभी जीबीसी बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो श्रील प्रभुपाद के उपरांत श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने इस आंदोलन का उत्तरदायित्व तो ग्रहण किया, और क्रमशः श्रील प्रभुपाद के शिष्य जब इस धरातल से जा रहे हैं तो उनके बाद की जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, उनको प्रशिक्षित करके उत्तरदायित्व देने की तैयारी चल रही है। तो इसलिए कुछ विशिष्ट पूरे भारत से कुछ विशिष्ट भक्तों को चुना जाता है और उनको फिर उस जीबीसी कॉलेज में भेजा जा रहा है। तो सारे लोग भक्त वहां पर गए, तो अब भारत में से आपको कहा जाए, जैसे अभी हम डीसीसी के लिए गए थे नवंबर महीने में, डिवोटी केयर कोर्स एक कहा हुआ था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया, तो पूरे भारत से गिनकर कुछ 12 भक्तों को चुनना था, 12 या कुछ, मतलब हर जोन से 3-3, मतलब उत्तर भारत से 3, फिर पूर्व से 3, पश्चिम से, ऐसे कुछ 20-25 बहुत गिने चुने भक्त थे। तो बहुत विचार करके उनको ही चुना जाता है कुछ विशेष भक्तों को। तो वैसे ही यह जो हरे कृष्ण जगत, वैसे अगर कहा जाए कि इस धरातल पर अनादिकाल से जिन भगवान को प्राप्त किया, ऐसे भक्तों की गणना की जाए तो अनंत है, असीम है, और अनंत उन असीम भक्तों के अंदर श्रीमद् भागवत में किन भक्तों को लेना है, तो कुछ विशिष्ट भक्तों को ही चुना जाता है, विशिष्ट भक्तों की कथाओं को। भगवान की असंख्य लीला है, भगवान के असंख्य अवतार है, तो भगवान के असंख्य माता पिता भी है, परंतु तो विशिष्ट जो माता पिताओं को चुना गया तो उनमें ये माता देव होती है जिनका अति प्रशंसनीय है कि इतना अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी हो फिर अंत वैराग्य उदाहरण किया। तो एक तो ये साधारण भक्त नहीं है, इसलिए यह विचार करना, कल जैसे अंततः जो विचार हो गया कि माता देवती में कुछ गलती हुई थी क्या, असल गलती नहीं थी, भगवान विष्णु से शिक्षा देने के लिए, जैसे देवताओं से गलती होती क्या, प्रश्न उठता है, देवताओं के राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी की ओर आकर्षित हो गए, कभी कभी देखता है एक देवता जो दूसरे देवता की पत्नी की ओर आकर्षित हो जाते, कभी गुरु की पत्नी की ओर आकर्षित हो जाते, इस तरह के जो क्रियाएं जब प्रतीत होती है तो प्रश्न उठता है कि देवता इतनी बड़ी गलतियां कैसे करते हैं। तो वहां पर आचार्यगण तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविक मूलतः भगवान कुछ विशिष्ट शिक्षा देने के लिए देवताओं से गलती करवाते हैं। जो देवता जो भगवान के आदेश पर समर्पित है वो बहुत अधिक गलतियां नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो हर रोज गलती करते रहते होंगे, परंतु कभी कभी उनकी ऐसी गलती क्यों दिखलाते हैं, तो उसका एक कारण ये बतलाते हैं कि यह देखकर आपके स्वर्ग जाने की इच्छा नष्ट हो जाए। वहां पर भी तो यही चलता है प्रभु जी, जो यहाँ पर हो रहा है वहां तो वहां फिर जाने की इच्छा नहीं होंगी। हालांकि हमारी आजकल कमल झुंटू कह रहे थे कि कलयुग के जीव का इतना नहीं, और कोई भक्त है कितना अधिक अध पतन हो चुका है कि अब वो आप कहा जाए स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग की कामना नहीं, अभी अमेरिका की कामना, रशिया की कामना है, क्योंकि अभी उच्च लोगों के प्रति श्रद्धा ही नहीं रही, तो उच्च लोगों की बात है ही नहीं। परंतु इस उच्च स्थानों में भी जब दोष दिखलाते या इस कारण से कि वहां की कामना ना हो, तो वैसे यहाँ करदम और देवहूति के जीवन में इतना अधिक ऐश्वर्य दिखलाया है जिसको बहुत विस्तृत रूप से सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया, मैत्रेय ऋषि ने वर्णन किया। मैत्रेय जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किए वे विदुर से कह रहे हैं, वे विदुर जिनका भगवान ने अंतकाल में स्मरण किया, ये दोनों बहुत उच्च कोटि के संत, अंत तो बैठ के वो किसी हवाई महल का चर्चा करेंगे क्या, कितने 2 BHK फ्लैट था, फिर गाड़ियां कितनी थी, क्यों वर्णन वह किया जा रहा है, इतना विस्तृत वर्णन इसलिए किया कि इतना अधिक ऐश्वर्य के उपरांत भी असंतुष्टि है। पहले संसार का समस्त भोग भी आपके सामने रख दिया जाए, परंतु आत्मा की जो अंततः तृष्णा कृष्ण प्राप्ति से जो पूछती है, वो और किसी जड़ पदार्थ से वह पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए वो माता देवहूति का संदर्भ बताया गया। और दूसरा हमने फिर अंततः यह भी एक बात बतलाई कि यह जिस प्रकार का अनुभूति माता देवहूति को हुई, जो पिछले अध्याय के अंतिम 7 श्लोक में उन्होंने जो कही कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, या कल हम नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों को भी स्मरण कर रहे थे, या कई भक्त इस तरह से जो भगवत भक्ति में उच्च अनुभव किए हैं आध्यात्मिक अनुभव, उनका प्रथम लक्षण यह कि उनके जीवन में उन्हें बहुत विलाप किया कि मेरा जीवन ऐसे विफल चला गया, वो बहुत शोक करते। ऐसा कोई भक्त दिखा नहीं एकदम क्या हो? भक्ति लाभे यदि लोभ है, 10 अपराध छाड़ी लई नाम आश्रय, एक एक अपराध 70 कहिया अगले क्या एक एक अपराध 70 कहिया, एक शब्द छूट रहा है, एक एक अपराध 70 कहिया चित्ते विलाप करिया अंततः शब्द जो है। तो उस श्लोक को भी यहां पर बतला है कि हरिदास ठाकुर जो हरिनाम चिंतामणि में कहे इस शब्द को कि जो नाम आश्रय लेता है, नाम भजन करता है, उसे एक तो सतर्क होना चाहिए परंतु साथ में विलाप होना चाहिए हृदय में कि कितना मूल्यवान यह जो काल था, मूल्यवान जीवन व्यर्थ ही चला गया भगवत भजन के बिना, भगवत स्मरण के बिना। और भगवत स्मरण में भी अभी तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, जो प्रेम भगवान सहजता से देने के लिए संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए कलयुग में, परंतु वे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आकर, वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का आश्रय लेने के उपरांत भी वंचितो हम हरिणा बंध रूपिणा, वहां पर भागवत प्रथम स्कंद में अर्जुन शोक करते हैं, वे भी विलाप करते हैं कि मैं भगवान हरि के साथ था परंतु भगवान हरि के सानिध्य में से मैं वंचित हो गया और उनका जो लाभ था मुझे नहीं मिल पाया। तो यह जो अवस्था है यह भी भक्ति में बहुत उच्च अवस्था है। मतलब अभी तो हमारी अवस्था क्या कि हम साधना कर रहे हैं, साधना भी नहीं है इसको, जिसको शिवराम महाराज कहते हैं, एक होता है डिवोशन और दूसरा होता है क्या कहते हैं सेम्बलेंस, मतलब एक प्रतिबिंब कह सकते हैं भक्ति के अंग का भी प्रतिबिंब। मतलब भक्ति अभी ऐसे उतनी प्रारंभ नहीं है, क्योंकि भक्ति जब प्रारंभ होंगी, जैसे हम 2 दिनों में स्मरण किए थे इस बात को, भक्ति के बहुत ही अलग लक्षणों का वर्णन यदि हम नारद भक्ति सूत्र पढ़ते हैं श्री नारद मुनि द्वारा, उसमें बताए भक्ति है क्या। बहुत सुंदर शब्द है, क्या अमृतो भवती तृप्तो भवती, बहुत सुंदर शब्द तृप्तो, मतलब एक अलग आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है जो भक्ति करता है। तद विस्मरणे इति परम व्याकुलते इति, ये शब्द मैं भूल रहा था परसों, कि किंचित मात्र भी यदि भगवत विमुख यदि क्षण चला जाए, कुछ क्षणों के लिए भी ऐसा क्षण चला जाए कि हम भगवान का स्मरण न हो, भगवान का नाम छूट गया, तो तुरंत वो व्याकुल होने लगता है, बेचैन होता है, कैसे ये समय चला गया मेरा। हमारी अभी जो समय के हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं जितना गुरु साधु से निर्देश प्राप्त होता है, परंतु उसके बाद एक सहज, जिसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3rd अध्याय 30वें श्लोक में कहे ज्वर युद्ध से विगत ज्वर, युद्ध करो, ज्वर मतलब ज्वर को क्या कहते हैं, बुखार रोग है ना, रोग मतलब ज्वर होता है, बोले बीमारी को छोड़ो और युद्ध करो। श्री प्रभुपाद अनुवाद क्या किया, ज्वर मतलब क्या है, हाँ नहीं नहीं क्या है, अध्याय 3 श्लोक संख्या 30 मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। ज्वर मतलब बीमारी हुआ ना, रोग हुआ। और वहां पर अनुवाद में क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मई सर्वाणी कर्माणि, अपने समस्त कर्मों को सन्यस्य आध्यात्म, अपने समस्त कर्मों का को मुझे अर्पित करके आध्यात्म चेतसा कृष्ण भावना में स्थित होकर निराशी, मतलब कुछ आशा इस संसार की मत रखो, निर्मम, ममत्व की भावना न हो, इस संसार के प्रति कोई ममत्व मत रखो, युद्धस्व अपना युद्ध करो, तुम्हें जिन विहित कर्म दिया गया उसे करो, परंतु विगत ज्वर, जिसको श्रील प्रभुपाद अनुवाद लिखे गिव अप लेथार्जी, आलस का त्याग करो, या जैसे तो वहां पर परम पूज्य राधानाथ महाराज श्लोक पर जब व्याख्यान किए तो कहते कि भक्तिमय जीवन में सबसे भयानक जो रोग है या माया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं प्रहार एक जब साधक के ऊपर होता है वह है कि जब साधना करते समय एक ढीलापन आ जाए। ये जैसे आप ऋषिकेश ब्रूस सुने थे ना, तीन कार्यों में असंतुष्टि, तीन कार्यों में संतुष्टि, ऐसा कुछ बतला रहे थे। तब इस बात को बतलाया गया कि भजन में जब आपको संतुष्टि होने लगे, हो गया ना जब, हो गया प्रभु जी आज हो गई सेवा मैंने कर ली, तो जब आपको सेवा में और साधना के क्रियाओं में संतुष्टि है, मतलब आज से साधना प्रारंभ भी नहीं। कथा श्रवण का क्या लक्षण है, तुलसीदास जी रामायण रामचरितमानस में कहते हैं राम कथा जे सुने अघाही, ऐसे कुछ तो भी अघाही मतलब जो कहते हो गया, जैसे आपका पेट भर चुका ना, कथा सुनते सुनते अगर आपके मन में अगर विचार आ जाए जिसको कहते अलम बुद्धि, अलम बुद्धि मतलब हो गया, मैंने कथा सुन ली। किसी को पूछते ना आपने भागवतम पढ़ा है क्या प्रभु जी, हम भागवतम पढ़ चुके हैं, आपने भगवत गीता पढ़ी, हमने भगवत गीता पढ़ी है, आपने कथा सुनी है, हाँ हम तो भागवत कथा सुन चुके हैं। तो वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं यदि आप भक्ति कर रहे हैं और आप में यह अगर भाव आ गया कि आपने कथा सुनी, अगर आप कहते हैं मैंने सुन ली, मतलब अभी तक आपने कथा को प्रारंभ ही नहीं किया, कथा का श्रवण अभी तक प्रारंभ होने, कथा श्रवण जब होती है तो उसका लक्षण है कि वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रम यश्रुणताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, कि वो वहां पर शौनक आदि ऋषि उनके प्रश्न आए आप सुनेंगे प्रथम अध्याय में, तो प्रश्नों से ऐसे लगता है कि ये तो पूरा ज्ञान जानते हैं, भगवान के समस्त अवतारों को ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, क्योंकि उन्हें अवतारों के विषय में पूछते हैं, परंतु कृष्ण अलग कहा ना देव क्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण, अब ऐसा क्यों नहीं पूछा कि कौशल्य और दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान ने कौन सी लीला की, और फिर कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में कौन सी लीला की, हर माता पिता का नाम नहीं लिया, देवकी वसुदेव का नाम लिया और बाकी सब अवतार को एता नाना अवतार नाम निधान बीजा व्यम, कैसे श्लोक एता नाना अवतार निधान भूल गया शब्द, तो समस्त अवतारों के लीलाओं को बतलाइए वो एक श्लोक में डाल दिया सब अवतारों को, और कृष्ण को अलग श्लोक में लिखा, जिससे प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि के मन में कोई संदेह नहीं था भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। दूसरा फिर आगत आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम वेश गुणन तथो सद्य विमुच्य, और अगला श्लोक यद पादशम श्रुत मुने प्रशमान सद्य पुनंति उत्पृष्टा स्वर दुन्य आपुन सेवया, नाम की महिमा साधु संघ की महिमा भगवत तत्व की महिमा ये सभी पूर्ण रूप से जानते थे वे शौनक आदि ऋषि थे, और वे वहां पर प्रारंभ किए। तो अन्य शब्दों में अभी हमारी जो अवस्था है ये बहुत ही एकदम नौसिखिया अवस्था कहते हैं, जिसे अंग्रेजों कहते हैं नियोफाइट स्टेज, जिसमें बहुत सहज आपके संतुष्टि आ जाती है, परंतु क्रमशः क्रमशः बहुत दीर्घ काल तक निरंतर दीर्घ काल सत्कारार्थम, पातंजलि सूत्र में ये कहा गया तीन है भजन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तीन बोला गया सत्कारार्थम निरंतरम और दीर्घ कालम, कि कोई भी क्रिया को जैसे आप नाम की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई श्रवण की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, भगवान की किसी सेवा में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीन होता है। पहला होता है सत्कारार्थम, मतलब उसे अति आदर के साथ किया जाए, अत्यंत श्रद्धापूर्वक किया जाए, आदर पूर्वक किया जाए और प्रेम के साथ किया जाए उस क्रिया को, पहला सत्कारार्थम। फिर दूसरा निरंतर, उस क्रिया को निरंतर करना पड़ेगा तब फल मिलता है। जैसे माता है जब भोजन बनाती है तो अनुभव है कि अगर आप रसोई बनाने के लिए अगर जो भी पकवान है जो भी सब्जी है उसे जब गैस के ऊपर रखते तो उसको अग्नि का ताप निरंतर देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप दो मिनट के लिए वो तेल जैसे गर्म हो रहा था तो फिर आपने अचानक गैस बंद कर दिया, फिर दो मिनट बाद गैस फिर से शुरू किया, फिर उसमें आप छोंक दे रहे हैं, अब तो तेल वैसे भी ठंडा हो चुका है दो मिनट के गैप कारण। और आप दिन में ऐसे उसको हर दो मिनट में बंद करते रहो, चालू करो बंद करो चालू करो, इस तरह से करेंगे तो कितनी संभावना है कि सब्जी बनेगी। तो इसलिए दूसरा वहां पर पाताल सूत्र कहता है कि निरंतर हो क्रिया सत्कारार्थम हो, और फिर तीसरा कहा दीर्घ काल तक हो। तो दीर्घ काल तक जब वो क्रिया की जाती है तो वो फिर फल देना प्रारंभ करती है। तो यहां पर माता देवहूति की जो अवस्था है यह भी बहुत उच्च अवस्था है, इतना सहज नहीं आती कि जो पश्चाताप हो, पश्चाताप के लिए पहले बहुत साधना करनी पड़ती है। साधना करते करते अंततः जब समझ में आए कि दोष है, कुछ तो भी गलत है, मेरे अंदर कुछ बीमारी है, मेरे अंदर कोई रोग है, जब यह मन में विचार आएगा तब रोग का निवारण करने का प्रयास करेंगे। अभी प्रारंभिक हमारी भक्ति में अभी तो हमको लग ही नहीं रहा कि रोग है। पूछा जाए कितने को लगता है कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मदो मात्सर है, तो ये सी प्रवचन में हम सुनते हैं और मन में यह एक दृढ़ संकल्पना है कि मेरे अंदर तो काम भी नहीं है क्रोध भी नहीं है, मैं सही में बहुत अच्छा हूं। परंतु समस्या क्या है, लोगों को भी मेरी महिमा पता नहीं चली है मैं कितना महान हूं, हमें भावना ये रहती। परंतु फिर यह जब अनुभव हो तो यहां पर मैं प्रशांता माता जी का सेमिनार जिसके कुल कुछ भाग में कल रह गया था जिसमें बहुत सुंदर ऐसे बातें बतलाई थी जिसको कहते हैं किस तरह से यह अनुताप की अवस्था आती है। तो उसमें वे कहते हैं कि बहुत आवश्यक है कि निरंतर अपने आप स्वयं का विश्लेषण किया जाए। आप साधना जब करें साधना के उपरांत स्वयं का विश्लेषण हो, मतलब स्वयं को परखा जाए। आध्यात्मिक अभ्यास कभी भी दूसरों को परखने के लिए नहीं होता है। जैसे भक्तिव्रत भागवत महाराज कहते हैं कि आप जैसे जो प्रवचन सुनते हैं हमारा एक बद्ध अवस्था में एक स्वभाव क्या होता है, जैसे प्रवचन सुनेंगे प्रवचन में भक्त ने ऐसा होना चाहिए, भक्त ने ऐसा होना चाहिए, भक्त का ऐसा होना चाहिए, भक्ति में अभ्यास ऐसा होना चाहिए, जो जो हमने सुना हम तुरंत दूसरे में चेक करने लगते हैं। प्रभु जी ने कहा था, प्रभु जी ने सुना, देखो देखो ये सो रहा है वो सो रहा है, जितना भी हम सुनते हैं हम मतलब भक्ति की शिक्षाओं को हम अन्यों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। परंतु भक्तिव्रत भागवत महाराज कहते हैं हम जितना श्रवण करते वास्तविक सब श्रवण व्यक्तिगत प्रयुक्ति के लिए। तो यहां पर बताए कैसे वह अनुताप हो, तो कहा जाता है कि पहले दीर्घ काल की साधना हो, साधना होने के उपरांत अगर हमको कुछ गलती दिख नहीं रही अपनी तो क्या करना चाहिए, अनुताप हो नहीं रहा है, बोल तो दिया परंतु हो नहीं रहा है, तो वहां पर कहते हैं कि फिर प्रार्थना इसके लिए करें कि कुछ मेरे दोष पता चले भगवान मुझे कि क्या हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम कम हुआ, क्या था, क्या हुआ जिस कारण से इस संसार में हम आए, कौन से दोष हुए। निसंदेह मतलब दूध के धुले तो हम है नहीं, हमको जो लग रहा है उतने हम स्वच्छ है नहीं, इसलिए संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। कोई आप में से कोई होगा कोई भगवान के नित्य परिकर जो अमरावती का उद्धार करने के लिए आए तो बात और है, परंतु सर्वसाधारण तौर पर यदि साधक दृष्टि से देखा जाए तो हम सही में दोषों से पूर्ण थे इसीलिए इस संसार में अभी तक है। तो यहां पर कह रहे कि प्रार्थना, इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, अर्जेंटली प्रेयर, अर्जेंटली अर्जेंटली मतलब क्या, सनातन भूषण अर्जेंट ARDENT अच्छा तीव्र, तीव्र भावना से यहां कहते कि प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान क्या मेरा दोष क्या अनर्थ क्या है पहले पता चले, और जब पता चल जाए तो मुझ में इतना क्या कहते करेज इतना साहस हो कि मैं उसको स्वीकार कर सकूं। तो एक कहा जाता है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और दूसरा है कि अपने जीवन में कम से कम, जैसे कल ये वाक्य मैंने बाद में पढ़ा, हालांकि मैं कल कह चुका था पर परंतु यहाँ पे बाद में वो वाक्य मुझे पता चला, यहाँ लिखा था कि अपने जीवन में कम से कम एक संत ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा साधु आपके जीवन में हो जिसके सामने आपकी भावना आपकी चेतना को आप निर्वस्त्र कर सके, शरीर से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, परंतु भावना को, मतलब अपना पूरा मन खोल कर रखे। जब तक कोई रोगी अपने हृदय को खोलता नहीं तब तक डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा दोष निवारण तभी होता है जब एक कोई हमारे जीवन में हो, एक पर श्रद्धा होनी चाहिए। आवश्यक नहीं मतलब जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जाता है, परंतु हमारे जीवन एक ऐसा हो जिसके प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है, जिस साधु के प्रति, जिसके समक्ष हम जाकर फिर निर्वस्त हो सके। मतलब हम स्वयं उनको कहें कि भगवान कहते हमने जप अच्छे से किया, हमने प्रार्थना भी की, परंतु अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी तक लग रहा है कि मैं ठीक ही हूं। तो उनको जाके कहना चाहिए कि आपको कुछ दिख रहा है क्या मुझ में गड़बड़, तो उनको बहुत कुछ दिखता है, उनको पता चल जाता है तुरंत, क्योंकि हमको अपना दिखता नहीं है, अपने आंख का कचरा स्वयं को दिखाई नहीं देता है, परंतु मेरे चश्मे के ऊपर जो कचरा है वो सामने वाला व्यक्ति देख सकता है। तो यहां पर क्या है, पहला है कि दृढ़ साधना की जाए, बहुत अच्छी साधना। मतलब एक चीज है कि आपको अपने दोष तभी दिखाई देंगे जब आप सतोगुण में स्थित हो, ये भी बात है। जो तमोगुण रजोगुण में हो वो कभी विलाप नहीं कर सकता। ये व्यक्ति रो रहा है मतलब तमोगुण का लक्षण नहीं है। जब सतोगुण में आप स्थित होंगे तब जिसको क्या कहते हैं, सत्वा सत्वा प्रकाशम उपजायते, सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम उपजायते, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम उपजायते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सत्वगुण क्या करते हैं, निर्मलत्वात्, वो हृदय को निर्मल करता है। प्रकाशम, प्रकाश मतलब जैसे उजाला, आप लाइट चालू करो तो आपको सब दिखाई देता है ना, आप लाइट चले गया तो अंदर कुछ दिख नहीं रहा है कि आपका मोबाइल कहाँ रखा गया, आपकी बीड बैग कहाँ रखी, आपने कौन सी वस्तु कहाँ रखी, दिख नहीं रहा है, परंतु लाइट जैसे चालू करते तो आपको हर वस्तु सही स्थान पर दिखाई देती है। तो जब सत्वगुण का एक लक्षण होता है कि पहले तुरंत कुछ गलती हुई तो दिखती है। The symptom of purity is more you become pure, more you realize the impurity. शुद्धिकरण का एक लक्षण होता है कि शुद्ध जो व्यक्ति होता है उसको अशुद्धि अपनी दिखती है। जो अशुद्ध व्यक्ति है उसका एक लक्षण रहेगा कि उसको दूसरों की अशुद्धि दिखाई देंगी, परंतु शुद्ध होता है उसका एक प्रथम लक्षण होता है उसको अपना कुछ दिखता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रथम सतोगुण में स्थित होकर साधना करते हैं, सतोगुण में स्थित होते हैं, दूसरा आगे प्रार्थना करना, और तीसरा होता है कि अपने जीवन में एक कोई साधु हो, एक भगवान का ऐसा प्रतिनिधि जो जिसके समक्ष हम अपने गुह्यम आख्याति पृच्छति यह करते हैं। और उसके उपरांत कहा गया कि यह तीन प्रकार से विश्लेषण जब हो जाए तो फिर होता है स्टडी योर अनर्थास, यहां पर लिखा गया स्टडी अंतर, मतलब अपने को दोष पता चल गया। जैसे कहा कि किसी ने कह दिया कि हाँ प्रभु जी या माता जी, कहा कि आप में बहुत अधिक क्रोध आता है, तो क्या करना पड़ेगा, कब कब क्रोध आता है, कितने समय क्रोध आता है, किन परिस्थितियों में क्रोध आता है, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि विशिष्ट स्थिति जब इस तरह से कोई मेरे व्यवहार करे तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता। तो फिर उसका विश्लेषण मतलब कि किन परिस्थितियों में मैं उस दोष से प्रभावित होता हूं, कि जैसे ये उदाहरण सब ठीक है प्रवचन दे। एक भक्त से, एक ब्रह्मचारी से हम प्रश्न पूछे कि पूछे बाहर कभी क्यों खाते क्यों नहीं हो, बाहर का कभी भी प्रसाद नहीं लेते हो। तो उसने अपना अनुभव बताया कि उसने कहा कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन का विश्लेषण किया, जब जब मैंने बाहर का मतलब वो भगवान के मंदिर का प्रसाद लेते, मंदिर में आश्रम में रहते, काफी पुराने भक्त है लगभग 20-25 साल से, तो अपना अनुभव बता रहे थे कि जैसे ही मैं मंदिर के बाहर का कुछ अन्न लिया, मैंने जो उनके विग्रह है जो आराध्य है उनका प्रसाद छोड़ के बाहर का कुछ लिया, उस दिन रात्रि को मुझे नींद में कुछ ना कुछ समस्या होती है, दुस्वप्न या स्वप्न दोष आदि ऐसे अलग जो भी दोष होते हैं निद्रा में, वो तुरंत अनुभव होते जिस दिन बाहर का अन्न मैं लिया। तो वो एक नियम रखे अपने जीवन में। तो उस तरह से हमारे जो भी दोष है वो कब अधिक हम पर हावी हो जाते कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, तो उसको विश्लेषण करके लिख कर निकालना चाहिए। और उसके उपरांत यहाँ पर कहा गया कि मेंटेन अनर्था डायरी। ये प्रशांत माते बताई थी लगभग 10 वर्ष पूर्व, 10 साल तो हो गए। पुणे में एक रिट्रीट हुआ था, वहां पर इस बात को बतलाए थे। तो मैं एक अपनी डायरी बनानी चाहिए, अनर्थ डायरी, मतलब अपने दोषों को लिखने का अभ्यास करें। ये बहुत, मतलब इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आपको कहा कागज पे लिखो तो फिर वो बोलेंगे आपको सभी को। और उस समय करवाया भी था शायद, जहां तक तो मुझे स्मरण है, जब प्रशांता माता जी सेमिनार लिए थे, यहाँ तक कि सब एक एक कागज अपना अपना निकालो और वो कागज किसी दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, और लिखो कि सबसे प्रमुख चीजें अपने कौन कौन से दोष है, कि हमको नींद अधिक आती है या हमें ये दोष है, हमारे अंदर ये त्रुटि है, ये लिखो। तो लिखने से सबसे प्रथम क्या होता है कि भगवान हमारे प्रामाणिक प्रयास को देखते हैं कि ये जीव देखो कितना गंभीर। जैसे आप जानते हैं शिल प्रभुपाद के समय, शिल प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिन्हें शिल प्रभुपाद संन्यास दिए। संन्यास के उपरांत उन्हें अपने संन्यास पालन, संन्यास धर्म का पालन करने में काफी कठिनाई होने लगी, क्योंकि पाश्चात्य जगत का संस्कार थे, प्रभाव था, इसलिए बहुत समस्या हुई। तो अंततः तो वो पत्र लिखे शिल प्रभुपाद को कि शिल प्रभुपाद, मैं नियमों को पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इनमें मेरे हृदय के अंदर काम वासना से प्रभावित हो रहा हूँ, मेरे अंदर इस तरह का है। तो शिल प्रभुपाद को पत्र भेजा गया, शिल प्रभुपाद के समक्ष जब पत्र आया तो शिल प्रभुपाद के एक सचिव थे, वे पत्र को पढ़कर सुना रहे शिल प्रभुपाद को, पढ़कर बता रहे कि ये भक्त लिख रहा है कि इसके अंदर काम वासना है, इसका मन जो है विचलित हो रहा है, बाहर के वातावरण से प्रभावित हो रहा है, यह सब लिखा। तो भक्त ने शिल प्रभुपाद को पत्र पढ़कर बताया, तो जब पत्र पढ़कर बताया तो वो भक्त आपस में विचारे, बेचारा कितना पतित है, कितना देखो काम वासना आ रही है, मतलब बाकी भक्त ये सोच रहे थे, परंतु तुरंत भक्तों ने शिल प्रभुपाद की ओर देखा और विचार किया प्रभुपाद क्या प्रतिक्रिया दे रहे। शिल प्रभुपाद के आंखों में पानी आ गया था और प्रभुपाद क्या कहे, देखो ये जीव कितना कृष्ण के लिए संघर्ष कर रहा है, सी हाउ मच ही स्ट्रगलिंग फॉर कृष्ण, कि जीव एक प्रामाणिक प्रयास कर रहा है कृष्ण के आने को और कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से गुरु देखते हैं वैसे भगवान भी इस बात को देखते हैं, हमारे प्रयास को। जो तो लिखने का है, जब कई बार मैंने कहा भी कि जब कथा भी श्रवण आप करते, कथा श्रवण करते हम देखा गया कुछ भक्त एकदम ऐसे बैठते जैसे एकदम सर्व वेदों के ज्ञाता ही है, हमको तो सब पता है और हम श्रुति धरे, परंतु देखा कुछ भक्त है जो पेन नोटबुक लिखकर, नोटबुक लेकर लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, सबसे पहली चीज भगवान देखते हैं कि ये जीव प्रामाणिक प्रयास कर रहा है, मैं सही में कुछ ग्रहण करना चाहता हूं। कल मैंने कहा ना श्रवण की परिभाषा क्या है, श्रवण सुनने को श्रवण नहीं कहा गया है, श्रवण मतलब रिसेप्टिविटी। जैसे मैं मधुपति प्रभु को फोन कर रहा हूं, परंतु मधुपति प्रभु ने मन में विचार ही कर लिया है कि मैं फोन रिसीव नहीं करूंगा और फोन उठाने को तैयार नहीं, उन्होंने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर रखा है कि आज जब तक मेरा माला नहीं होंगी, अनंत शेष प्रभु के साक्षात भगवान भी फोन करेंगे तब तो हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, वो ऐसे संकल्प, वो फोन रिसीव ही नहीं करना चाहते, तो रिसेप्टिविटी नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से कितने भी कॉल करूं तो कुछ फायदा है नहीं। तो यदि कोई कितना भी कृपा देना चाहता है, कितना भी कथा देना चाहता है, परंतु सामने वाले यदि ग्रहण करने को तैयार न हो तो फिर वह अंदर प्रवेश नहीं करता है, कृपा अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो ग्रहण करने का एक लक्षण क्या होता है, तो वहां बताया था कि आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो आपके अलग अवस्था है, मैं इन जनरल में कह रहा हूं कि ग्रहण करने का एक लक्षण होता है कि व्यक्ति एकदम पेन नोटबुक लेकर बैठ जाता है कि हाँ आज मुझे कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो शायद मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, आज का भागवत प्रवचन मेरे जीवन में प्रेम प्रदान करने के लिए रखा गया है। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते कि आप श्रवण अध्ययन जब करते हैं तो क्या आवश्यक है, जैसे परीक्षित का भाव, परीक्षित को पता कि 7 दिन ये जो सुनना यही बस अब मुझे भगवान को प्राप्त कराने के लिए ये सबसे प्रमुख साधन है और इस साधन ही मुझे भगवान तक लेकर जाएगा। तो वहां पर क्या शब्द है राधानाथ महाराज का, देयर शुड बी सेंस ऑफ अर्जेंसी वेन एवर यू रीड प्रभुपाद बुक्स। जब शिल प्रभुपाद के ग्रंथों को जब कथा का श्रवण करते तो क्या होना चाहिए, कि एक अर्जेंसी की भावना, मुझे आग लगी जैसे चारों तरफ से, और यही एक में है जो मुझे बचाने वाला है, आज का ये भागवत प्रवचन ही जो मेरा उद्धार करेगा, और ये भागवत प्रवचन यदि मेरे जीवन से छूट गया तो फिर मेरा फिर कोई गति नहीं है। इस भावना के साथ भागवत में प्रवचन बैठेंगे, हर भागवत की कथा वो निर्भर नहीं करती प्रवक्ता पर। एक बहुत विशेष बात है, श्रोता के कारण भागवत की कथा प्रकट होती है, वक्ता का अपना विशेष योग्यता नहीं है। ये कई बार कहा गया है, कई अलग अलग कथाओं में सुने कि श्रोता का जो समर्पण है, श्रोता का जिस तरह की शरणागति रहती है, वो बाध्य करती है भगवान को आविर्भूत होने के लिए एक प्रवक्ता के मुख से। प्रवक्ता की अपनी विशेषता नहीं होती उसमें। तो वैसे वो जब ग्रहण करने का मैं कह रहा था कथा, तो अब जो लिखते हैं, जो लिखने का जो अभ्यास करते हैं, चाहे कथा हो चाहे फिर अपने दोष हो, तो यहां पर कहा गया है कि मेकिंग अ डायरी एंड राइट सम प्रैक्टिकल टिप्स। तो पहले हमने कहा कि एक डायरी अपने दोषों को पर लिखना, और फिर दोष कब हम पर हमारे जीवन में प्रकट होते उन परिस्थितियों को लिखना, उन अवस्थाओं को लिखना। फिर तीसरा सच्चिदानंद प्रभु कहते हैं, सच्चिदानंद प्रभु जो कहते हैं कि आपका जो दोष है उस दोष का बहुत अधिक अभ्यास करना चाहिए शास्त्र में। जैसे आप में काम वासना है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर ईर्ष्या भावना है, तो ईर्ष्या भावना के ऊपर भागवत में कहां कहां वर्णन किया गया है। जैसे इंद्र द्वेष करता है पृथु महाराज से, वह प्रसंग आता है कि मेरी कुर्सी चली जाएंगी, तो हमेशा बार बार वो घोड़ों को चुरा लेता है। तो हम जिस दोष का भी प्रभावित है, वास्तविक हम सभी दोषों से प्रभावित है, समस्या सिर्फ समय की है, अभी तक सब निकले नहीं है, अंदर निकलने सभी वाले, हमें हर चीज है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग लगता है कि एक्चुअली मेरे अंदर लोभ होगा शायद, पर काम वासना तो बिल्कुल नहीं है, क्रोध तो नामो निशान नहीं है मेरे अंदर, और ईर्ष्या द्वेष भी नहीं। लोभ शायद कुछ परसेंट होगा, 10-15% मैं शुद्ध बनने वाला हूं, तो ये 10-15% निकल जाएंगे। जब शुद्ध होंगे तो पहली चीज आपको पता चलेंगी, सबका सब आपके अंदर है, हर चीज दिखेंगी भी आपको। तो उसके लिए फिर कहते कि रेगुलर रिव्यू ऑन एवरी एकादशी, एवरी एकादशी देर शुड बी कृष्ण स्मरण रिव्यू एंड देर शुड बी अनर्थ दर्शन रिव्यू। यहां पर लिखे कि आप कितना पिछले 15 दिन में कितना मैं भगवत स्मरण किया, नाम जब कितना हुआ, साधना कितनी हुई, 15 दिन में भागवत कितना मैंने पढ़ लिया, कितना चैतन्य चरितामृत पढ़ा, तो कृष्ण का स्मरण कितना हुआ उसका अवलोकन करना, और साथ में दोष 15 दिन में कितना मेरे जीवन में आया, कितना मैं इस दोष से प्रभावित हुआ। और फिर कहा गया है कि डिस्कस विद द सुपीरियर्स, कि वो अगर नहीं निकल रहा है, वो जब दोष ना निकले तो उसको, जैसे यहां पर माता देवती करदम के समक्ष अपने हृदय को प्रकट किया, वैसे किसी एक साधु के समक्ष अपने हृदय को प्रकट करें। और अति आवश्यक हो, यहां पर कहा ये है कि बहुत अति आवश्यक हो तो संघ स्थान या सेवा का परिवर्तन करें। शायद उस सेवा करने में आपको, जैसे अगर कोई काम वासना से प्रभावित हो तो स्वाभाविक ऐसी सेवा होनी चाहिए जिसमें स्त्रियों के साथ अधिक आदान प्रदान न हो, पुरुष और स्त्री का आदान प्रदान हो, तो अगर उसे पता है कि वहां अगर मेरे मन को प्रभावित करे तो अति आवश्यक हो। चेंज एसोसिएशन सेवा और स्थान इफ इट्स टू मच नेसेसरी। और फिर कठोर स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू रिमूव दैट अनर्थ, कुछ विशिष्ट संकल्प के साथ उस अनर्थ को निकाला जाए। तो इस तरह से तब यह जो माता देव होती है, अब रह गया आज का श्लोक छूट गया, क्षमा कीजिए। अब करदम का शब्द तो रह गया, शुक्ला अभिव्याहृतम स्मरण वा। तो माता देवहूति के का जो अनुताप है, उस अनुताप के कारण हमने यह विचार यह पिछले 3 दिनों में स्मरण किया कि हम अपने दोषों के लिए विलाप करें, अपने दोष पहले दिखेंगे तो फिर विलाप होगा, और फिर तब एक ऐसे वरिष्ठ साधु के समक्ष जाए जो हमारे हमारी भक्ति को प्रोत्साहित करें। यहां पर आप देख रहे हैं कि निराश हो गई माता देवती, तब करदम मुनि उन्हें प्रोत्साहित करते, मां खिदो, जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मां शुच। आप जहां भी देखेंगे भगवान जब प्रकट होते हैं, चाहे देवताओं ने प्रार्थना की या देवकी, सबसे पहले भगवान कहते टेंशन मत लो, ब्यू नको मी तुझा पार्टीशन। भगवान का वाक्य है, और किसी ने कॉपी मार ली होंगी तो बात और है, परंतु भगवान और भगवान के भक्त का एक लक्षण, या जिसे कहते एक सही प्रचारक का लक्षण है कि वो कभी भी दूसरे को हतोत्साहित नहीं करेगा कृष्ण भावना में, वो वो प्रोत्साहित ही करता है। तो जैसे यहां पर आप पहला शब्द आप देखें कर्दम बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले माखिद, चिंता मत करो, दुखी मत हो, तो तुरंत भक्ति में प्रोत्साहन। विश्व से मैं एक बात सुन रहा, आजकल कई प्रवचन रहते, सभी प्रवचन में श्रील प्रभुपाद के प्रवचन में क्या अंतर है? बहुत अच्छा वाक्य लगा मुझे कि आजकल आप सभी प्रवचन सुनते हैं, ये महाराज के, वो सन्यासियों के, ये भक्तों के प्रवचन, और उन समस्त प्रवचनों में श्रील प्रभुपाद के प्रवचन क्या विशेषता है? श्रील प्रभुपाद का हर प्रवचन आपको प्रोत्साहित करता है। श्रील प्रभुपाद का कोई भी प्रवचन डराने जैसा नहीं है। भक्ति हमारे बस की बात नहीं है, भक्ति मतलब बहुत कठिन है, माया बहुत शक्तिशाली, ऐसा नहीं। भक्ति बहुत सहज है, कृष्ण प्राप्ति अत्यंत सहज है, ये अनुभव होता है श्रील प्रभुपाद की कथा सुनकर। श्रील प्रभुपाद का हर प्रवचन भले छोटा रहता है परंतु प्रोत्साहन देता है। तो वैसे यहां पर एक सही प्रचारक या सही गुरु, शिक्षा गुरु हो, काउंसलर हो या माता पिता हो, आप जब भी उच्च भूमिका निभाते हैं तो आप पर जो आश्रित है उसे कृष्ण भावना सर्वप्रथम जो प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस तरह से यहां पर कर्दम मुनि की मां खिद राजपुत्रितम आत्मानम प्रत्यनिंदिते, तो तुरंत उसके गुणों को देखा कि तुम अनिंदित हो, तुमने गलती कुछ नहीं की है, तुमने तो बहुत अच्छी सेवा की है, तो भले ही तुम सांसारिक जीवन में रही परंतु तुम्हारे तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत भगवान स्ते अक्षरम गर्भम अधूरात, अधूरात शब्द के दोनों अर्थ, अधूरात मतलब यहां पर ऐसे कहा कि शीघ्र ही, और अधूरात का एक और एक भाव है, अधूरात मतलब भगवान बहुत दूर नहीं है, अधूरात भगवान आ गए, बस तुम्हारे पेट में प्रवेश ही करने वाले है, बस अब गर्भ में तुम्हारे भगवान आने वाले है, इस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया गया कर्दम ने। तो वैसे मुझे देवकी और वसुदेव का स्मरण हो रहा था परंतु वो प्रसंग तो रह गया, वहां पर भी भगवान गर्भ में आए थे देवकी, तो दो, एक तो देवकी के गर्भ में आए, फिर दूसरा माता अदिति के गर्भ में आए थे वामन देव के रूप में। ये दो प्रसंग को स्मरण करके मैं बैठा था कि बोलूंगा वो, परंतु वो प्रसंग रह गया, जाने दीजिए। ठीक है, तो इन दो श्लोकों में आप इस माता देवहूति के भाव को देखें और कर्दम मुनि का जो भाव है। अब कर्दम मुनि के भाव में और एक शब्द जो मैं भूल गया था, शुक्लाभि व्याहृतम स्मरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही माता देवहूति रोने लगी तो क्या हुआ? जनरली क्या होता है, एक भक्त अपना रोना सुनाता है हमको, मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा है वैसा है, तो हम भी रोने लगते हैं उसके साथ, तो हमको पहले क्या करना चाहिए? तो यहाँ शुक्ला भी व्याहृतम स्मरण लिखा गया है, मतलब कर्दम मुनि ने देखा, कर्दम मुनि ने सुना माता देवहूति का शोक, उसके सबसे पहली चीज भगवान के वचनों को स्मरण किया उन्होंने। शुक्ला मतलब भगवान श्री हरि, अभी व्याहृतम भगवान ने जो वचन कहे थे स्मरण, उसको स्मरण किया। तो हम भी जब इस संसार में किसी भी जीव को कृष्ण भावना प्रदान करना चाहते हैं तो कई लोग आके हमारा दुखड़ा रोते रहते हैं ना, प्रभु जी घर में ये प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी ने ऐसा कहा, तो मेरे बाप माँ बाप ने ये कहा, तो पैसे का टेंशन, तो बेटी का टेंशन, दुनिया भर के लोग अपना भी दुखड़ा लेकर आते हैं। तो हमको पहली चीज क्या करनी है? कर्दम मुनि के पद चिन्हों का अनुगमन करना है। पहली चीज शुक्ला भी व्याहृतम स्मरण, वो कहा गया मतलब स्मरण किया भगवान के वचनों को। यहाँ पर जिस परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा में सुन रहा, उसमें कहते कि एक तरह से उन्होंने कहकर भी बतलाया माता देवती को, चिंता मत करो, हमारी शादी के पहले मैंने भगवान की तपस्या की थी, तब भगवान प्रकट हुए थे और भगवान ने मुझे कहा था कि मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में, तो अब भगवान आने वाले। तो ये पूरी स्टोरी उन्होंने कहकर बताई एक तरह से, और फिर उन्हें प्रोत्साहित किया माँ खिदय राजपुत्रितम, और भगवान अब प्रकट होंगे। तो भगवान प्रकट होने के लिए क्या करना है? भगवान गर्भ में हमारे जीवन में आविर्भूत हो उसके लिए क्या निर्देश है? तो अब जिस तरह से गुरु एक शिष्य को निर्देशित है, वैसे कर्दम मुनि माता देवहूति को कुछ वचन कहेंगे जिसकी व्याख्या आप हिज ग्रेस अज गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। कल रामानंद रायकन थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे कुछ, अगर और रहा तो इसको चर्चा करके, कल श्री रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है तो कल उनकी कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को टीका टिप्पणी प्रश्न? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।